स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरह पढ़े और जो पढ़े वो समझे और जो समझे उस पर अमल करने की कोशिश करे अगर वो काबिले अमल चीज है। उसी तरह एक फरमा बरदार बेटे की क्या जिम्मेदारी है, एक बेटे की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप की बात सुने, वो अपने माँ बाप से माँ बाप की किसी बात के खिलाफ वर्जी ना करे, सही है ना, और अपने माँ बाप से बुलंद आवाज से बात ना करे, उनको झिड़के ना, ये एक बेटे की खुसूसियत। इसी तरह एक औरत की जिम्मेदारी क्या है, एक लड़की की जिम्मेदारी क्या है, सबकी जिम्मेदारियां है, कोई भी शख्स दुनिया में नहीं है जिसकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, बदनसीब शख्स वो है जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हो, कि उसके जिसको ये पता ना हो कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, बदनसीब है वो शख्स। इसीलिए हमको दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार तू हमको हमारी जिम्मेदारियों से आशना कर दे, यानी तू हमको हमारी जिम्मेदारियां बतला दे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब हम बच्चे हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, जब हम जवान हो जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, जब हम अधेड़ उम्र में आ जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। उसी तरह देखिए इंडिविजुअल बहैसियत फर्द आपकी एक जिम्मेदारी है, और फिर बहैसियत इज्तिमा, इज्तिमा यानी सोसाइटी, सोसाइटी में आपकी एक जिम्मेदारी है। दो दिन पहले यहीं पर हम लोगों का सुबह तफसीर का दर्स हो रहा था, तो सामने पड़ोस से एक आदमी गालियां दे रहा था पास, वो ये कह के गालियां दे रहा था कि कोई उसके घर के सामने कचरा डाल दे, क्यों, क्योंकि कोई गैर जिम्मेदार शख्स उठ के उसके घर के सामने कचरा डाल दिया, वो सुबह उठ के गालियां दे रहा था, सबको गालियां दे रहा था। सोसाइटी में हम जब रह रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि कचरा हम कहां पर डालें, जहां पर कचरे का ढेर है, जो कुंडी है जिसको कुंडी के जवान आके कचरा डाले ना, ये कि जहां पर भी कचरा डाल दें, जहां पर भी दिल में आया कचरा डाल दें, कौन डाला था ये पता नहीं, लेकिन वो गालियां सबको दे रहा था। तो गैर जिम्मेदार एक शख्स गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन गालियां सबको सुननी पड़ी। तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, हम सबको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, यानी हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे इस मर्द, यानी बिल्कुल ये कचरे की मिसाल है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कचरे को कूड़ेदान में डालें, रोडों पे ना फेंकें, सही है, ये हमारी जिम्मेदारी है सोसाइटी के उन्मान से, बहुमान्य सोसाइटी। अब आइए ये जिम्मेदारी के एहसास को हम शहीद मुजाहिद की जिंदगी में देखते हैं कि वो किस हद तक अपनी उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। आइए शहीद मुद्दा जिम्मेदारी के एहसास रखने वाले शख्स को कहते हैं वजीफा शिनास, क्या कहते हैं
वजीफा शिनास
कहने जिम्मेदार शख्स जिसको मालूम है कि उसको करना क्या है, सही है। देखिए आलिम की जो जिंदगी होती, जो लोग भी इल्म हासिल करते हैं हौजे में जाकर, हौजे का नाम तो सुने ना आप लोग, हौजा यानी शिया लोग जाकर जहां पर इल्म दीन हासिल करते उसको हौजा कहा जाता है, सही है ना। अब दुनिया में सबसे बड़ा हौजा जो इस वक्त है वो कुम में है, कुम कहां पर है, कुम ईरान में है, सही है ना। ईरान का कैपिटल क्या है, क्या है बच्चों, पीछे से बड़े लोग को रहते हैं, बच्चों में से कोई भी नहीं बोल रहा, ईरान का कैपिटल तेहरान है, तेहरान से 135 किलोमीटर के फासले पर कुम है, और कुम इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हौज़े इल्मिया है, यानी जहां पर पूरी दुनिया के लोग आकर इल्मे दीन इस्लामी उलूम को हासिल करते हैं, सही है ना, वो कुम है। तो शहीद मुतहरी भी हौज़े इल्मिया कुम के पढ़े हुए हैं, वहीं पर उन्होंने अपना यानी वहीं पे उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, सही है ना। जैसा हम लोग स्कूल्स में जाके पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हैं, उसी तरह इस्लामी उलूम को हासिल करना है तो कहां जाना पड़ता, हौज़े इल्मिया कुम या नजफ, आजकल नजफ भी जा रहे हैं लोग, पहले भी जाते थे, या हौज़े इल्मिया कुम या हौज़े इल्मिया नजफ, नजफ कहां पर है, इराक में। खूब शहीद मुतहरी ने जब अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी का जो उन्होंने एहसास किया वो थी तबलीग दीन, यानी दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, यानी लोगों को ये समझाना कि ये दीन किस लिए आया, सही है ना, ये दीन किस लिए आया। जिस वक्त शहीद होता है, जिस वक्त शहीद मुतहरी ने इस बात का एहसास किया कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त तबलीग दीन है, उस वक्त हौजे में किसी की तवज्जो इस बात की तरफ नहीं थी, यानी कोई भी इस तरफ मुतवज्जे नहीं था। तबलीग दीन, लोगों को दीन से आशना करना, लोगों को दीन की बातें बतलाना, लोगों को ये बातें बतलाना कि वो दीन दीनदार किस तरह से बने, इस तरह से वो अल्लाह के दीन को अपनाए, अल्लाह के दीन का पैगाम क्या है, ये लोगों को मालूम नहीं था और कोई भी इस तरफ मुतवज्जे नहीं था। ऐसे में शहीद मुतहरी ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि लोगों को दीन के पैगाम, लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया जाए। तबलीग, तबलीग जो हम कहते हैं, तबलीग का रूट वर्ड बलगा है, बलगा, बे ला, बे ला है, बलगा, बलगा यानी पहुंचाना, किसी चीज को पहुंचाना, सही है ना। वमा अलैना इल्लल बला, कुरान मजीद की आयत है कि रसूल फरमाते हैं कि हमारा काम सिर्फ पहुंचा देना है, यानी अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचा देना हमारा काम है। इससे ये मुराद ना लें हम कि हमारा काम पहुंचा देना है, यानी इब्लाग करना, इब्लाग यानी पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, इब्लाग करना, इब्लाग, इसी उसी से तबलीग निकला, लोगों को अल्लाह की बातें बतलाना, लोगों को अल्लाह के दीन की बातें बतलाना, दीन के दायरे में रहकर जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है, ये सब बातें बतलाने को तबलीग दीन कहते हैं, सही है ना। वमा अलैना इल्लल बला, इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान की जिम्मेदारी से सुखदोष हो गया, यानी वमा अलैना इल्लल बला का मतलब ये है कि इंसान इस तरह से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाए या समझाए कि उसके जहन में किसी किस्म का कोई शक और शुबा बाकी ना रह जाए। अंबिया का काम यही था, अंबिया दीन को इस तरह से पेश करते थे कि किसी शख्स के जहन में कोई शुबा, कोई वहम बाकी नहीं रहता, क्लियर, एकदम क्लियर तरीके से दीन को पेश कर देते थे। कोई ये नहीं कह सकता था कि मुझे समझ में नहीं आया। अब मसलन यहाँ पर कई लोग मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं और कितने लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन नबी का काम ये होता था कि वो दीन के पैगाम को इस क्लियरली, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही आसान सहज अंदाज में लोगों तक पहुंचा दे, और कोई शख्स ये ना कह सके कि आपने जो बात कही वो मेरे समझ में नहीं आई। इब्लाग का मतलब ये है। और शहीद मुतहरी जिन्होंने अपना वजीफा ये समझा कि तबलीग दीन की जाए, तो उन्होंने ऐसी जबान इंतखाब की, यानी ऐसा तरीका और रविश इंतखाब की शहीद मुतहरी ने कि लोगों को ये मौका ना मिले कि वो ये कहें कि आपकी बात हमको समझ में नहीं आई। यानी दीन को इतना क्लियर तरीके से शहीद मुतहरी ने लोगों के सामने पेश किया कि अब उनके पास कोई बहाना नहीं था कि हमको ये बात समझ में नहीं आई। ये सबसे अहम बात है। मुश्किल ये है कि समझाने में हमें बहुत मुश्किल होती है, यानी एक बात को समझाना है उसमें इतनी मुश्किल, मखसूसन जो बातें फलसफी हैं, जो बातें दीन से मुतालिक है, उन बातों को सहज अंदाज में हर आम आदमी को समझाना आसान बात नहीं है, मुश्किल काम है। आप इसीलिए देखें, बड़ों को बास बातें बड़ों को समझाना आसान है, लेकिन बच्चों को समझाना मुश्किल है। तो हुनरमंद शख्स वो है जो बातें अपनी बच्चों तक को भी समझा दे, यानी बच्चे भी ये ना कह सके कि आपकी बात हमको समझ में नहीं आई। शहीद मुतहरी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने हर एज के लोगों के लिए दीन पेश किया है। बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए उन्होंने किताब लिखी, दास्तान या रास्तान, यहाँ पर वो उर्दू तर्जुमा उसका रखा हुआ है, ये कमरे के अंदर सच्ची कहानियां उर्दू तर्जुमा है। उस जमाने में जब शहीद मुतहरी ने ये किताब लिखी, यूनिसेफ, आप लोग जानते हैं यूनिसेफ, यूएनओ का बच्चों का शोभा है, यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इन लोगों का जो चिल्ड्रंस का शोभा है उसको यूनिसेफ कहते हैं। यूनिसेफ वालों ने इस किताब को अवार्ड के लिए इंतखाब किया, इतनी अच्छी किताब बच्चों के लिए शहीद मुतहरी ने लिखी। क्यों? क्योंकि जान रहे थे कि बच्चों, आज देखें बच्चे हमारी जो सबसे मुश्किल चीज है कि हमारे पास बच्चों को दिखाने के लिए कोई कार्टून नहीं है। पोगो देखते बच्चे, कार्टून नेटवर्क देखते, उस पे बच्चों को अखलाक, बच्चों के अखलाक खराब होने वाली चीजें दिखाते उस पे। माँ आप तो बड़ों के साथ बदतमीजी से पेश आना, ये चीजें पोगो पे दिखलाते और कार्टून नेटवर्क पे दिखलाते। हमारे पास कमी क्या है, हमारे पास वो कार्टून्स अवेलेबल नहीं है जो हम बच्चों को दिखाएं तो बच्चों के अखलाक सुधर जाए, वो बड़ों की इज्जत करना शुरू कर दे। उस जमाने में चूंकि कार्टून नहीं था, उस जमाने में किताबें राइज की, तो शहीद मुतारी ने किताब के जरिए से बच्चों को अखलाक की तरफ, दीन की तरफ राग़िब करने की कोशिश की। किताब लिखी दास्तान रास्तान, सच्चों की कहानियां, सच्चे लोगों की कहानियां, उसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, सच्चे लोग कैसे होते हैं, ये तमाम बातें शहीद मुतारी ने उस किताब में लिखी। फिर बड़ों के लिए जो उन्होंने किया, क्या किया, बड़ों को दीन समझाने के लिए हौजा छोड़ दिया। हौजा छोड़ के कहां चले गए, फोन से तेहरान चले गए। तेहरान में कहां चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए। यूनिवर्सिटी में कौन लोग रहते, यूनिवर्सिटी में मौशरे के, सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग रहते। अगर कोई बात पढ़े लिखे लोगों में की जाए और जाहिल लोगों में की जाए तो पढ़े लिखे लोगों में वो जमीना समझने का ज्यादा होता है। अगर वो वाकई पढ़े लिखे हों तो उनमें किसी बात को समझने का ग्राउंड होता, ग्राउंड पहले से फराहम रहता, सही है ना। जैसा क्रिकेट के लिए मुनासिब ग्राउंड ढूंढते ना, भाई पिच ऐसी होना चाहिए, ग्राउंड ऐसा होना चाहिए, उसी तरह हर बात को पेश करने का एक ग्राउंड है, एक मैदान है। तो शहीद मुतारी ने अपने लिए कौन सा मैदान चुना, यूनिवर्सिटी का मैदान चुना कि अगर मैं यूनिवर्सिटी जाऊं और यूनिवर्सिटी में जाकर दीन की बात कहूं तो आसानी से लोग समझ सकेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा फसाद उस जमाने में यूनिवर्सिटी से फैल रहा था। यूनिवर्सिटी के जरिए से, यूनिवर्सिटीज में लोगों को बेदीन बनाया जा रहा था, क्योंकि उस जमाने में कम्युनिज्म का गलबा था। कम्युनिज्म कहते हैं, कम्युनिज्म अभी भी कम्युनिज्म है बाज लगा, कम्युनिज्म यानी कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह कोई चीज ही नहीं है, जो कुछ है वो इंसान है। ये अच्छी बात है, अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह नहीं है, जो कुछ है इंसान है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, क्योंकि जो कुछ है वो अल्लाह है। खुद हम भी जो क्रिएशन है, हम अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने हमको क्रिएट किया है, अल्लाह ने हमको बनाया है। तो उस जमाने में यूनिवर्सिटी में कम्युनिज्म फैल गया था, लोग ये कह रहे थे अल्लाह की जरूरत नहीं है, या अल्लाह अल्लाह की जो बातें करते वो बेकार बातें हैं। शहीद मुतारी यूनिवर्सिटी गए, जाकर उनको समझाए, नहीं, जो कुछ है वो अल्लाह की वजह से है, इंसान जो कुछ है वो अल्लाह की वजह से, इंसान अल्लाह का क्रिएशन है। जाकर उनसे डिबेट करते थे, डिबेट यानी मुनाजरा करना, मुनाजरा यानी आपस में दो लोग सामने बैठ के बहस करते, मेरी बात सही है, मेरी बात सही है, जिसके पास बड़ी दलील रही उसकी बात कबूल कर ली जाती। तो शहीद मुतारी उस जमाने में यूनिवर्सिटी में जाकर लोगों को दीन समझाना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस की, जबकि उस जमाने में लोग यूनिवर्सिटी जाने को, हौजे के लोग खासतौर पे यूनिवर्सिटी में जाने को बुरी बात समझते थे। एक आलिम का यूनिवर्सिटी में जाकर क्या काम है, एक आलिम का अबा खबा अमामा पहनने वाले का कोट पैंट पहनने वालों के दरमियान क्या काम है, ये सोचते थे लोग। और जब शहीद मुतारी खुम से जा रहे थे तेहरान की तरफ, तो लोगों ने कहा भी अगर आप खुम में रुक जाएं तो अजब नहीं आप मर्जे तकलीफ बन जाएं, आपकी तकलीफ होना शुरू हो जाए, इतने पढ़े लिखे थे। लेकिन शहीद मुतारी ने कहा कि नहीं, मेरा इस वक्त वजीफा, मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं और लोगों को यह समझाऊं, लोगों को खुदा की बातें बतलाऊं, लोग खुदा से दूर हो रहे हैं, मैं लोगों को खुदा से नजदीक करूं, खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाऊं। ये जिम्मेदारी का एहसास शहीद मुतारी ने अपनी तालीम के बाद किया और फिर तेहरान गए, तेहरान यूनिवर्सिटी में रहे। तेहरान यूनिवर्सिटी में रहकर कई नौजवानों के ऊपर काम करके उनको दीनदार बनाए, उनके ऊपर काम किया, उनको खुदा की बातें बतलाई, दीन की बातें उनको समझाई, दीन की बातें समझाकर शहीद मुतारी ने उनको दीनदार बना दिया। वो नौजवान जो उस जमाने में शराब के आदि थे, गंदे गंदे कामों के आदि थे, शहीद मुतारी ने दीन की बातें बतलाकर उनसे शराब छुड़ा दी, उनकी जो गंदी आदतें थी वो तमाम गंदी आदतें उनसे छुड़वा दी। आसान काम है, आप हिम्मत करके देखिए किसी शराबी से शराब छुड़ाइए, आसान काम है। आसान काम नहीं है। किसी शराबी से, किसी नशा करने वाले से उसका नशा छुड़ा देना आसान काम नहीं है। लेकिन शहीद मुख्तार इस वक्त जब यूनिवर्सिटी गए तो वो कई लोग जो नशे के आदि थे, जो शराब और दीगर नशा, नशे की चीजें, ड्रग्स इस्तेमाल करते थे, शहीद मुख्तारी की बातें सुनकर वो लोग सब छोड़ डाले, छोड़ के सीधे रास्ते पे आ गए। तो शहीद मुख्तारी की सीरत से एक चीज जो हमको समझ में आती है, हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है कि हम, हमारी जिम्मेदारी क्या है। बच्चे हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, जवान है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, स्टूडेंट है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, आलिम है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, मिंबर के नीचे बैठकर मजलिस सुनने वाले हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, मिंबर पर जाकर मजलिस पढ़ने वाले हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। तमाम शोभों में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। तो पहली चीज शहीद मुख्तारी की, शायद मैं दो ही चीजें बयान कर सकूं क्योंकि वक्त काफी निकलता जा रहा है। तो पहली चीज शहीद मुख्तारी की जिंदगी से जो हमको सबक मिल रहा है वो है वजीफा शिनासी, यानी जिम्मेदारी का एहसास। हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। हम यहाँ पर आ रहे हैं सुनने के लिए, तो जो बातें हम सुन रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें, सही है ना। सुनने वालों की जिम्मेदारी क्या है, सुनने वालों की जिम्मेदारी है कि अमल करें, जो बातें मालूम हो, अच्छी अच्छी बातें जो समर कैंप में यहाँ पर बतलाई जा रही हैं, उन बातों को हम सुने, सुनकर उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें, हमारी जिंदगी में उन बातों पर अमल करें। और ये बात भी समझ लें आप लोग कि आलिम दीन का सबसे अहम तरीन वजीफा, आलिम दीन की सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी तबलीग दीन है। दीन की बातें लोगों तक पहुंचाना, अल्लाह क्या चाहता है हमसे, कुरान में क्या लिखा हुआ है, हदीसों में क्या लिखा हुआ है, ये बातें पहुंचाना आलिम का काम है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आलिम अगर मिंबर पर से कुछ ऐसी बातें करे जो कुरान में नहीं है, कुछ ऐसी बातें करे जो हदीसों में नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आलिम से बहुत ही खुश अखलाकी से और बहुत ही मुअद्दबाना अदब तरीके से सवाल करें कि आपने ये जो बात पढ़ी कहाँ से पढ़ी, ये बात तो ना तो कुरान से मेल खाती है, ये बात ना तो हदीस से मेल खाती है, ये बात आप कहां से कह रहे हैं, बादत तरीके से पूछने वाली बात है या नहीं है सुनने वालों के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि आप वक्त दे रहे हैं, आप एक घंटा अपना सर्व करके उस आदमी को सुनने के लिए जा रहे हैं, तो आपको हक हासिल है कि आप सवाल करें। तो शहीद मुख्तारी ने तबलीग दीन के सिलसिले में क्या किया, किताबें लिखी। शहीद मुख्तारी की कई किताबें हैं, अभी आप लोगों को क्लिप में दिखाया जा रहा था, शहीद मुख्तारी की किताब है अदल इलाही, अल्लाह आदिल है, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी पर
जुल्म नहीं करता
और ना अल्लाह जालिमों को पसंद करता है, अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता। हम जालिम बनना चाहेंगे, नहीं बनना चाहेंगे, हम जालिम बनना नहीं चाहेंगे। तो अदले इलाही पे शहीद मुख्तारी ने किताब लिखी, सही है। उसके बाद जो है खवातीन, इस्लाम में खवातीन का मकाम क्या है, उस जमाने में लोग ये कह रहे थे कि इस्लाम ने खवातीन को पीछे कर दिया, इस्लाम की वजह से खवातीन पीछे हो गई। शहीद मुख्तारी ने आगे ये साबित कर दिया कि इस्लाम ने खवातीन को पीछे नहीं किया, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज ने खवातीन को पीछे कर दिया, इस्लाम ने खवातीन को ऊंचा मकाम दिया, वो मकाम दिया जिसकी वो हकदार थी। इस्लाम ने खवातीन को ऊंचा मकाम दिया, इसलिए क्या कहा गया, अगर कोई मर्द या कोई औरत, अगर वो मोमिना हो, मोमिन हो, मर्द या औरत अगर वो मोमिन हो और अच्छे आमाल करे तो ऐसों को बराबर अजर है, मर्द को भी उतना ही अजर है, औरत को भी उतना ही अजर है। तो शहीद मुख्तारी ने आगे साबित किया कि इस्लाम औरतों को पिछड़ाना नहीं चाहता, बल्कि इस्लाम हर मैदान में औरत को आगे देखना चाहता है। ये वजीफा शिनासी शहीद मुख्तारी की थी कि उस वक्त ये तस्वीर पेश किया जा रहा था अंग्रेजों की तरफ से कि इस्लाम में औरत का कोई मकाम नहीं है, इस्लाम में औरत को जो है बिल्कुल एक पिछड़ी हुई मखलूक माना जाता है। तो शहीद मुख्तारी ने आगे साबित किया कि नहीं, इस्लाम औरत को मोहतरम समझता है, उसको काबिले इज्जत समझता है, काबिले इज्जत समझता है तभी तो उसके लिए कहा गया। देखिए आपके पास कोई हीरा हो तो वो हीरे को आप कहाँ रखते हैं? आप कचरे के टोकरे में डाल देते हो हीरे को, या दिखेगा के बाहर चबूतरे पे रख देते उस हीरे को? नहीं, उस हीरे की हिफाजत करते, उस हीरे को घर में अलमारी में तिजोरी में छुपा के रखते। तो उसी तरह इस्लाम ने आकर कहा कि हमारे नजदीक औरत का मकाम हीरे के जैसा है, हीरे के जैसा, यानी हीरे की जितनी अहमियत है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के औरत की अहमियत है। लिहाजा इस्लाम ने कहा कि औरत हिजाब में हो तो उसका उसकी अहमियत हीरे से बढ़कर, और अगर हिजाब में ना हो औरत तो उसकी अहमियत कोई नहीं। मसलन ऐसी ऐसा हीरा है वो जो कचरे में पड़ा हुआ, कचरे में पड़े हुए हीरे की कोई अहमियत, कचरे में पड़े हुए कंकर की कोई अहमियत नहीं होती। तो शहीद मुतारी ने आके वाजे किया कि औरतों का इस्लाम में क्या मकाम है। उससे हटकर करबला के वाकया, करबला के वाकयात में अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत सी रौ रौ में बहुत सी बातें ऐसी बयान कर दी जाती है जो किताबों में लिखी हुई नहीं है। भाई आप जो बात बयान कर रहे हैं वो उसको किताब में लिखा हुआ ना, कम से कम एक किताब में होना मौजूद है उस बात का। आप ऐसी बात नहीं कह सकते जो किताब में लिखी हुई नहीं है। तो शहीद मुतारी ने आके हमासे हुसैनी की किताब लिखी, आकर उन्होंने कहा कि करबला में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बहुत सी बातें जो करबला में नहीं हुई हमारे मिंबरों पर से बयान की जाती है कि ये हुई, जबकि नहीं हुई करबला में वो बात। शहीद मुतारी ने आके हमासे हुसैनी नाम से दो जिल्दी बल्कि तीन जिल्दी पता नहीं दो जिल्दी शायद किताबें हैं, टू वॉल्यूम्स में शायद वो किताबें हमासे हुसैनी, उसमें आकर शहीद मुतारी ने लिखा कि करबला में ये हुआ और इस तरह से हुआ। करबला का एक सही पिक्चर आज तक, मुश्किल हमारी ये है कि हमारे सामने करबला का सही पिक्चर नहीं। पिक्चर यानी करबला क्यों रोनुमा हुई, करबला का मकसद क्या था, ये आज तक हमको नहीं मालूम है। मालूम है तो बताइए आप में से कोई बच्चे उठ के करबला का क्या मकसद था, बताइए कोई एक बच्चा उठ के बोलिए करबला का क्या मकसद था, इमाम हुसैन करबला क्यों गए? मसला नहीं है, इमाम हुसैन करबला जिस मकसद के लिए भी गए, क्योंकि शायद बाद में समर कैंप में बदलाया जाएगा, इमाम हुसैन जिस मकसद के लिए गए शहीद मुतारी ने हमासे हुसैनी में आकर वो बातें लिख दी कि इमाम हुसैन किस मकसद के लिए करबला के लिए निकले थे। वहां पर उन्होंने आकर शहीद मुतारी की सिर्फ किताबें नहीं है, शहीद मुतारी के कैसेट थे उस जमाने में, उस जमाने में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो थी वो कैसेट थी, रेडियो टेप रिकॉर्डर में डालकर कैसेट सुनते थे। आज कैसेट खत्म हो गए, कैसेट का जमाना खत्म हो गया, उनकी जगह सीडियों ने ले ली। तो उस जमाने में शहीद मुतारी तकरीरें करते थे, उनकी तकरीरों को रिकॉर्ड किया जाता था, रिकॉर्ड करके वो कैसेट्स को लोगों में बांटा जाता था ताकि लोगों के अंदर इस्लाम का सही तसव्वुर मालूम हो, लोगों को पता चले कि इस्लाम क्या है। तो शहीद मुतहरी का जो काम है, एक तो किताबी किताबें लिखी उन्होंने कई, और उनकी कई कैसेट उस जमाने में, उनकी किताबें भी जो है वो अक्सर कैसेटों को सुनकर लिखी गई है, कैसेट्स को सुनते थे यानी उस जमाने में कैसेट्स को सुनकर लिख देते थे वो किताबें सर्जर, बहुत यानी तमाम किताबें उन्होंने लिखी नहीं है। उनकी जो तकरीरें और जो किताबें उन्होंने लिखी है वो जब तक मैं देखा 23 वॉल्यूम्स थे। मजमू आसार शहीद मुर्तजा मुतारी, मजमू आसार यानी शहीद मुर्तजा मुतारी ने अब तक जितनी तकरीरें की जितनी बातें लिखी वो सबको जमा कर दिया गया, तो वो 23 वॉल्यूम्स हो रही थी उस जमाने में। अब शायद वो बढ़ गई हूँ क्योंकि काम जारी था उसके ऊपर। तो इबलाग का काम शहीद मुतारी ने सबसे अहम काम जो किया वो इबलाग, यानी दीन को समझा दे इस तरह से कि कोई शख्स उठकर ये कह ना सके कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आपने जो समझाया मैं पूरा पूरा उसको समझ गया। दूसरी बात कहके मैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगु को तमाम कर दूंगा, वो है आफत। शहीद मुतहरी की शख्सियत आफत से पाक थी। देखिए हर इंसान के लिए एक आफत है, आफत से मुराद क्या है, चैलेंज है। मसलन तालिबे इल्म के लिए चैलेंज क्या है, तालिबे इल्म के लिए चैलेंज ये है कि वो अच्छी तरह पढ़े और अगर वो ना पढ़े खेल कूद में अपनी पूरा अपना सारा खेल अपना सारा वक्त खेल कूद में गुजार दे तो फिर उसको कुछ हासिल हो सकता नहीं हो सकता। तो तालिबे इल्म के लिए आफत क्या है, अपना पूरा वक्त या तो टीवी देखने में गुजार दे या तो खेल कूद में गुजार दे, ये आफत है तालिबे इल्म के लिए, ये आफत है। तिजारत करने वाला बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है, दुकानदार के लिए आफत क्या है, दुकानदार के लिए आफत यह है कि वो टोल में कमी करे, अगर टोल में कमी करता है तो ये उसके लिए आफत है। तो दुकानदार रहते हुए टोल में कमी ना करना बहुत बड़ी बात है, सही है ना। अगर कोई दुकानदार टोल में कमी कर रहा तो समझो वो तिजारत की आफत से महफूज नहीं है वो शख्स। उसी तरह अगर कोई तालिबे इल्म है वो पढ़ लिख नहीं रहा है, उसकी उसका सारा वक्त टीवी देखने में सारा वक्त खेलकूद में अगर गुजर जा रहा है तो समझो वो खेलकूद और वो टीवी देखना उस तालिबे इल्म के लिए आफत है। हर तबके के लिए एक आफत है। उसी तरह जवान के लिए आफत क्या है, जवान के लिए आफत यह है कि वो अपनी जवानी को जाये कर दे, बेकार कामों में सर्फ कर दे, दोस्तों में बैठने में इधर उधर मटर मशियां जिसको कहते हैं, अगर उसमें जवान अपनी उम्र तल्ख कर दे तो ये उसके लिए आफत है। उसी तरह आलिम के लिए भी आफत है। आलिम के लिए क्या आफत है, आलिम के लिए आफत है कि बेअमल होना, आलिम के लिए आफत है कि इल्म तो आ गया बहुत सारा लेकिन अमल नहीं है, 100 इल्म आ गया लेकिन अमल के मैदान में जीरो है, ये आलिम के लिए आफत है। लेकिन शहीद मुतहरी आलिम बाअमल थे, आलिम बाअमल यानी जितना इल्म था उतने इल्म पर अमल करते थे, जितनी बातें मालूम थी, हमें बहुत सी बातें मालूम है हम सबको यहाँ पर है ना, नहीं मालूम है हमको, हमको मालूम है कि 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए लेकिन हम नहीं पढ़ते, सही है ना। तो ये आफत है हमारे लिए, हमको मालूम है क्या है बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए लेकिन हम अगर खुदा ना खास्ता करते हैं तो ये हमारे लिए आफत है। तो आलिम के लिए आफत क्या है, इल्म हो लेकिन अमल ना हो, ये आलिम के लिए आफत है। उसको मालूम हो कि ये बात सही है और ये बात गलत है लेकिन तब भी गलत बात से ना बचे, ये आलिम के लिए आफत है। लेकिन शहीद मुतहरी की शख्सियत, शहीद मुतहरी की जात इससे पाक थी, यानी वो जितनी बातें उनको मालूम थी उस पर अमल करते थे। अच्छा, आलिम की आफत जो है, अगर एक आम शख्स की आफत है तो वो उस शख्स तक महदूद है, लेकिन आलिम अगर आलिम को आफत लग जाए तो आलम को आफत लग जाए, यानी फसदल आलिम फसदल आलम, अगर आलिम गंदा हो जाए, आलिम बुरा हो जाए तो पूरी दुनिया को बुरा करके छोड़ देता। कई मिसालें हमारे सामने मौजूद है, एक आदमी बुरा हुआ उसने पूरी कौम को तबाह कर दिया, पूरी कौम का शिराजा बिखेर के रख दिया, पूरी कौम को तोड़ दिया, पूरी कौम का इतिहास पारा पारा कर दिया। क्यों? एक आलिम बुरा हो गया, एक आलिम जानने वाला बुरा बन गया। लिहाजा क्या कहा गया रिवायतों में, ये कहा गया कि तुम आलिम की गलतियों से बचो, आलिम की लफ्जिश से बचो, खुदा की पनाह मांगो, खुदा की पनाह मांगो कि आलिम कोई गलती ना करे, क्योंकि आलिम अगर गलती करेगा तो उसकी गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। उसकी कहा जाता है ना कि बड़े लोगों के बड़े बड़े गलतियां होती, बड़े लोग छोटे छोटे गलतियां नहीं करते, बड़े लोगों की बड़ी गलतियां होती हैं। अच्छा, आलिम के लिए आफत क्या है, आलिम के लिए आफत यह है कि वो अवाम पसंद बन जाए, यानी वो ऐसी बातें करे जो अवाम पसंद करने लगे। आलिम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो मिंबर पे गया, देखा कि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सूद खाते हैं। सूद खाना कैसा है, जायज है या हराम है? हराम है। सूद किसको कहते हैं, मसलन मैं किसी को 100 रुपए दूं, 100 रुपए देकर मैं ये कहूं कि ये 100 रुपए के बदले आप मुझे 150 रुपए वापस कीजिए, ये क्या हो गया, ये 50 रुपए क्या हो गए, सूद, इंटरेस्ट को देना इंग्लिश में उसको क्या बोलते। अब कोई शख्स सूद खाने वाला बैठा हुआ है, अब वो आदमी देख लेता है कि भाई इसके सामने ये नहीं कहना है मुझे कि सूद खाना हराम है, अगर मैं ये कहूंगा तो ये नाराज हो जाए, डर जाता वो शख्स, सही है ना। लेकिन जो खुदा से डरने वाला आलिम है वो कभी नहीं डरता, वो बोल देता सामने सूद खाना हराम है, सूद लेना हराम है, जो भी सूद खाता है शैतान का भाई है, कुरान मजीद की आयत है, तो शहीद मुतहरी एक ऐसे आदमी थे जो डरते नहीं थे किसी से, वो जो बात जहां पे कहनी चाहिए वो कह देते, आवाम पसंद नहीं थे। और आलिम के लिए एक मुश्किल यह है कि वो उस आलिम चाहता कि मुरीद उसके ज्यादा हो, उसके चाहने वाले ज्यादा हो, हमेशा उसके अतराफ 15 20 25 50 60 70 80 100 200 1000 1 लाख 2 लाख लोग जमा रहे हमेशा, आलिम ये चाहता। लेकिन शहीद मुतहरी ये सब नहीं चाहते, क्योंकि शहीद मुतहरी एक आलिम बाअमल थे, तो वो ये नहीं पसंद करते थे कि हजारों लोगों को अपने दरमियान में इकट्ठा कर लेते, वो ये पसंद करते थे कि अल्लाह को क्या पसंद है, वो बात जो अल्लाह को पसंद है वो बयान करते थे, चाहे बंदों को ना पसंद ही रहे लेकिन अल्लाह को पसंद है। तो आलिम की एक मुश्किल ये है कि आलिम अवाम पसंद बन जाए, ये आलिम के लिए मुश्किल बात है। यानी वो देखिए कव्वालों को देखिए आप, कव्वाल कव्वाल का नाम सुने, 16 को यहाँ पे कव्वाली होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह बर्खास्त हो गई वो कव्वाली, यहाँ पे होती थी कव्वाली। तो वो कव्वालों का काम क्या रहता, लोगों की फरमाइश पे कव्वालियां गाते रहते, दमादम भाई दमादम बोल के चिट्ठी गाती, तो वो दमादम की कव्वाली गाता, फला भाई क्या है वो अभी जो नहीं कव्वाली चल रही उसका जो नुसरत फतेह अली खान का भांजा गा रहा था, राहत फतेह अली खान दम हमा दम अली अली फारसी में गा रहा था, कुछ भी समझ में क्या था लेकिन गाओ बोलते फारसी में, वो चिट्ठी भेजते उसके पास। तो कव्वाल का काम क्या है, आवाम की पसंद पे गाने गाने गाना। अगर आलिम भी कव्वाल बन जाए तो वही बातें पेश करता जो आवाम चाहते, अगर कव्वाल जैसा बन जाए आलिम तो आवाम की फरमाइश पे बात पेश करता, आवाम को क्या पसंद है, आवाम को ये बात पसंद है चलो ये बात बोल के आवाम को खुश कर, वो ये नहीं देखता कि जरूरत किस बात की, किस बात को पेश किया जाना है, ये नहीं देखता। फिर और आलिम का काम क्या है, आलिम का काम इल्म हासिल करना, अमल करना और लोगों की खिदमत करना। ये जो लोग बस्ती में जलालत में गुमराही में डूबे हुए हैं, लोग मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालना, लोगों को उम्मीद दिलाना। नहजुल बलागा में हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हकीकी आलिम कौन है, हकीकी आलिम वो है जो लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस न करे और उनको गुनाहों पर जरी न करे, गुनाहों पर जरी कर देने वाला, लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस कर देने वाला आलिम नहीं है। अच्छा दूसरी चीज जो उलमा में आ जाती जो शहीद मुतहरी में नहीं थी वो थी बनावट, बनावट तसन्नो, तसन्नो यानी बनावट यानी अंदर अंदर कुछ है बाहर कुछ है, बनावटी बनावट रहना यानी जाहिर साजी भी बोलते हैं उसको उर्दू में। शहीद मुतहरी में ये चीज नहीं थी, जो अंदर है वो बाहर है, जो बात है वो है बस, ये शहीद मुतहरी की सिफत थी बउनवाने आलिम, यानी वो जाहिरदारी जाहिर साजी से पाक थे, यानी अंदर कुछ बाहर कुछ बनावटी बात कुछ ये सब नहीं, जो बात है वही है, जो बात है वो है और जो बात है लेकिन अकदार की पासदारी के साथ। आलिम का काम वैल्यूज, देखिए मॉरल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज यानी अच्छे अकदार, अच्छे अकदार यानी आप चोरी अच्छी बात है, झूठ अच्छी बात है, इसके मुकाबले में सच बोलना अच्छी बात है, किसी के माल की हिफाजत करना अच्छी बात है। तो आलिम का काम क्या रहता, अच्छाइयों को अच्छाइयों की हिफाजत करना, कोई भी बुरा शख्स मैं बुराई कर रहा हूं ये कहकर बुराई नहीं करता बल्कि अपने बुरे काम को भी अच्छाई का नाम देना चाहता, सही है। तो शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह जो थे उनका काम ये था कि वो जो है अकदार की पासदारी करते थे, यानी कोई शख्स उनके सामने अच्छाई को बुराई करके पेश नहीं कर सकता शहीद मुतहरी के सामने। और ये चीजें कब पैदा होती, जब इंसान के अंदर दो सिफतें पैदा हो जाए, एक ईमान दूसरे अमल सौले, अमल सौले यानी नेक अमल, अमल सौले यानी
नेक अमल,
ईमान पैदा हो जाए, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, इमाम पर ईमान, कयामत पर ईमान, अल्लाह के अदालत पर ईमान, फिर अमल सारे जितने नेक अमल है उन तमाम नेक अमल को अंजाम देना। एक रिवायत बयान करके आप हजरात की जहमत को तमाम करूं, वो ये कि चौथे इमाम हजरत जैनुल आबिदीन अलैहि सलाम से आप फरमाते हैं कि लोगों को उन लोगों को जब परखना हो तो उनकी इबादतों से धोखा मत खाओ। एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ ये मत देखो कि अरे ये शख्स नमाज पढ़ रहा तो अब जो है इससे यानी इससे कोई गलत बात नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। बल्कि लोगों को परखना हो तो मामला में परखो, उनके साथ मामला करो, उनके साथ कोई मामले में पेश आओ, उस वक्त पता चलेगा कि आदमी सही है, खरा है या खोटा है। किसी को नमाज पढ़ हम बहुत से नमाज पढ़ ले आप देखे होंगे यकीनन, बहुत से दाढ़ी रखने वाले ऐसे हैं जो बिजनेस भी करते हैं लेकिन चोर तोल तोलते तोल में कमी करते, सही है? तो ये बात सही है गलत है? बहुत से नमाज पढ़ने वाले आप देखेंगे गाली देते झूठ बोलते, ये बात सही नहीं है। तो लोगों को जब परखना हो तो मामला में परखो, उनको मामला उनका तमाम एवरी वॉक ऑफ लाइफ में देखो ये शख्स दीनदार है या नहीं है। सिर्फ नमाज पढ़ने से दीनदार नहीं हो जाता कोई शख्स, नमाज पढ़ने से एक हद तक दीनदार होता, पूरा दीनदार नहीं होता। फारसी का एक मकौला है फाहिन शबी रुस्वा हमरंग जमात शो, फाहिन शबी रुस्वा हमरंग जमात शो, यानी अगर माहौल ऐसा बन गया है कि आपको माहौल में ढल जाना है तो आप ऐसा कोई ऐसी बात मत कीजिए जो लोगों में रुस्वाई का सबब बने। कहते ना हमारे पास जैसा देश वैसा भेष, यानी एक शहर में गए 500 शराब पीने वाले आप भी शराब पीना शुरू कर दिए, क्यों भाई? नहीं नहीं तेरे सकते जी, शहर में सब शराब पीने वाले हमको भी शराब पीना पड़ा। एक शहर में सब बेहिजाब और बदहिजाब है, कोई हमारी बच्ची गई वहां पर यूनिवर्सिटी कॉलेज में, अरे नहीं नहीं वहां पे मजाक उड़ाते हिजाब का, मैं नहीं पहनती, मैं बुर्का नहीं पहनती, मैं स्कार्फ नहीं ओढ़ती, क्यों? मुझे रुस्वा नहीं होना है, वो दूसरे बच्चियां मुझे मस्करा बना करते हैं, दूसरे बच्चियां सताते। तो शहीद मुतारी कभी भी इस चीज का शिकार नहीं हुए, इंसान कभी भी अपना जो असली रंग है वो ना छोड़े, इंसान जो इस्लाम का रंग ऐसी मुहम्मदुल्लाह अल्लाह का रंग जो चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर वो रंग ना छोड़े। शहीद मुतारी हौजे से यूनिवर्सिटी मुंतकिल हो गए और यूनिवर्सिटी में बना के बुरे काम होते थे लेकिन कभी भी शहीद मुतारी को लोग कोई बुरा काम करते हुए नहीं देखे, यहाँ तक के प्रोफेसर में आम बात सिगरेट पीना है, पूरे प्रोफेसर सिगरेट पीते एक बड़ी तादाद प्रोफेसर की, लेकिन शहीद मुतारी को कोई सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखे, यानी बुरी आदत नहीं ली है वहां पर जान यूनिवर्सिटी में जाकर यूनिवर्सिटी में रहने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी की कोई बुरी बात को आप नहीं अपनाएं, ये शहीद मुतारी के क्वालिटीज थे। और बहुत से अगर बयान करने लगूं तो यकीनन सुबह हो जाए लेकिन बयान खत्म ना हो, तो मैं यहीं पर अपनी बात को तमाम करता हूं। दो पॉइंट्स बयान कर सका, एक पॉइंट ये कि शहीद मुतहरी एक जिम्मेदार आलिम दीन थे, उनको अपनी जिम्मेदारी का पता था कि कब क्या करना है, कब कौन सा कदम उठाना है, एक बात। दूसरी बात, शहीद मुतहरी आम आलिमों की तरह नहीं थे बल्कि वो आलिम बाअमल थे, यानी जो बात का इल्म रखते थे उस बात पर अमल करते थे, और इसकी बुनियाद ईमान और अमल साले है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।